அரிஹந்தாணம் நமோ சித்தாணம் நமோ ஆயிரியாணம் நமோ வஜாயாணம் நமோ லோயே சவ்வசாஹுணம். மோக்ஷ மார்க்ஸ்ய நேதாரம் பேதாரம் கர்ம பூவ்ரதாம் ஜ்யாதாரம் விஸ்வ தத்வானாம் வந்தே தத்குண லப்தே வந்தே தத்குண லப்தே வந்தே தத்குண லப்தே. ஜெயன் சாசன் கி யே சப்சே படி விசேஷதா ஹே கி யே ஜெயன் சாசன் வந்தே தத்குண லப்தே இஸ் பாத் பர் டிகா ஹே. வந்தனா ஹி ஹம் இஸ்லியே கர்தே ஹே பகவான் கி ஆப் ஜைசா பன்னா ஹே, நஹி தோ வந்தனா ஹி நஹி கர்தே ஹம். ஹம் தோ பஹுத் ஸ்வார்த்தி ஹே, ஹம் க்யோ நமஸ்கார் கரே ஆப்கோ, ஹமே தோ ஆப் ஜைசா பன்னா ஹே இஸ்லியே ஹம் ஆப்கே சரணோ கி சரண மே ஆயே ஹே. யே தத்வார் சூத்ர க்ரந்த கா மங்களா சரண ஹே. யே தத்வார் சூத்ர க்ரந்த சாத் தத்துவோ கி சர்ச்சா கர்னே வாலா மஹான் க்ரந்த ஹே. சாத் தத்துவ கே நாம் கல் பத்லாயே தே, தோடா பஹுத் ஸ்வரூப் பி பத்லாயா தா. இஸ் தத்வார் சூத்ர மஹாசாஸ்திர மே தஸ் அத்யாய ஹே, டென் சேப்டர்ஸ் ஆப்கோ பதா ஹே. ஸ்டார்டிங் கே சார் சேப்டர்ஸ் ஜீவ தத்துவ கா வர்ணன் கர்த்தே ஹே. டென் மே சே ஃபோர், தஸ் மே சே சார் அத்யாய ஜீவ தத்துவ கா வர்ணன் கர்னே வாலே ஹே. பாஞ்ச்வே அத்யாய மே அஜீவ தத்துவ கா வர்ணன் ஹே. छठे और सातवें अध्याय में आश्रव तत्व का वर्णन है. आश्रव का वर्णन करने के लिए सिक्स एंड सेवंथ चैप्टर. बंध तत्व का वर्णन आठवें अध्याय में. संवर और निर्जरा तत्व का वर्णन नौवें अध्याय में. और मोक्ष तत्व का वर्णन दसवें अध्याय में किया गया है. अभी पहले अध्याय में जीव तत्व का वर्णन करते हुए कई महत्वपूर्ण बातें कही है. हम पहले सूत्र की थोड़ी बहुत चर्चा कल यहाँ कर चुके हैं. सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है. मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता का नाम है. माने जहाँ सम्यक दर्शन भी होगा, जहाँ श्रद्धा सच्ची होगी, जहाँ ज्ञान भी होगा, और जहाँ ज्ञान और श्रद्धा कोरी नहीं है, जीवन में भी उतरा है, माने जहाँ चारित्र भी है, वहाँ मोक्ष मार्ग होता है. मोक्ष मार्ग की क्या जरूरत है? मोक्ष मार्ग, इसको यदि दूसरे शब्दों में कहें तो मैं कह सकता हूँ सुख का मार्ग. हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है, हम भी सुखी होना चाहते हैं. गिरीश भाई आप भी चाहते हैं सुखी होना? पक्का? हाँ, तो सभी सुखी होना चाहते हैं, है ना? तो सब सुखी होना चाहते हैं, तो सुखी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? तो श्रीमद् राजचंद्र जी कहते हैं, सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है, तू क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है. सुनी हुई लग रही है कुछ पंक्तियाँ महेंद्र भाई? हाँ, तमें गुजराती में बोलो छो. हाँ, मैंने हिंदी में बोला है. हमारे हम तो हिंदी वाले हैं ना, तो हिंदी में भी चलता है. उसी का हूबहू है, कोई फर्क नहीं है. वर्ड्स में भी कोई फर्क नहीं है. हिंदी में बोलो तो आपको ख्याल में आता है गुजराती में कौन सी लाइनें हैं. सुख प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्न करता है, लेकिन फिर भी सुख दूर जाता हुआ दिखता है. क्यों क्यों जाता है सुख दूर? निरंतर भाव मरण प्रवाह में उलझा हुआ है. कोशिश तो जारी है हमारी सुख प्राप्ति के लिए, और फिर भी सुख नहीं मिल रहा है. उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि शायद हम जो प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, हमारे द्वारा जितनी भागदौड़ की जा रही है, ये सारा प्रयास उल्टा चल रहा है. रेगिस्तान में गाड़ी चलाने जैसा है, रेस दिए जा रहा है और उसका व्हील धंसता है मिट्टी में, जैसे जैसे रेस दे रहा है वैसे वैसे व्हील और ज्यादा धंसता जाता है। अब क्या करें बोलो, ताला खोलना है क्या, और लॉक में की लगाई हमने और ताकत लगा रहा है और इतनी ताकत लगा दी कि वो की मुड़ गई और ताला नहीं खुल रहा है, क्या करें बोलो। इतने में कोई समझदार व्यक्ति आया कि भैया इतने प्रेशर का काम ही नहीं है जितना प्रेशर तूने माथे पे ले रखा है, ये चाबी अंदर डालो, हल्के से ऐसे घुमा करके ऐसे घुमाओ, ये देखो खुल गया। इसका कितना इजी काम है, ये मोक्ष मार्ग भी बहुत इजी है। इस मोक्ष मार्ग को हमने बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, हम लोगों ने इसको इतना उलझा दिया है। हमें ऐसे मोक्ष मार्ग किसी सम्यक दृष्टि की यदि बात कर लो ना महेंद्र भाई, आज के जमाने में ये सम्यक दृष्टि है तो लोग देखने लगते हैं, ये सम्यक दृष्टि, ये कोई सम्यक दृष्टि हो सकता है, हमें 50 साल हो गए आज तक नहीं हुआ, ये कल का छोड़ा ये सम्यक दृष्टि होगा कि क्यों, सम्यक दर्शन के लिए 50 साल लगते हैं, सम्यक दर्शन कितने सालों में होता है, मोक्ष मार्ग जीवन में प्रकट करना हो तो कितने साल लगेंगे उसके लिए, कितने साल का अभ्यास चाहिए आपको। सीधा पंडित जी देखो, हमने तो अभी अभी आना शुरू किया है, हम तो पुराने नहीं है ज्यादा, तो हमें हो सकता है क्या, कि हाँ हो सकता है। सच्ची श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है, इसके लिए ज्यादा लंबा काल बिताने की जरूरत नहीं है और ज्यादा उलझने की भी जरूरत नहीं है, सो सिंपल, इतना सिंपल है, निज को निज और पर को पर, निजमा निज बुद्धि थाए, बस इतना सा, इतना सरल काम है ये सम्यक दर्शन, इससे ज्यादा सरल क्या हुआ। युगल जी बाबू जी के शब्दों में यदि मैं बात कहूं तो मैं ये कह सकता हूं, मूंगफली छीन करके खाना यदि आपको आता है तो आप सम्यक दर्शन ले सकते हैं। क्या मूंगफली, ग्राउंड नट, मूंगफली छीलना आता है उसका, क्या करते हैं उसको छीन के, उसको निकालते हैं, फिर निकाल करके जो अंदर है उसको तो फेंक देते हैं। अच्छा उसको खाते हो, माने उसके अंदर जो है उसको खाते हो और छिलके को उसको भी खाते हो, उसको फेंक देते हैं। माने देखो आप, उसको छीलना और छीलने पर अंदर का जो माल है वो सेवन करने लायक है और ऊपर का जो छिलका है वो ग्रहण करने लायक नहीं है, बस इतना सा विवेक जिसके पास में है उन्हें सम्यक दर्शन का पात्र है। ज्यादा पात्रता नहीं चाहिए, ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, किताब आपने तत्वार सूत्र पढ़ा या नहीं पढ़ा, तो हमने तो नहीं पढ़ा, अब कैसे सम्यक दर्शन होगा, कि चिंता मत करो नहीं पढ़ा तो भी हो सकता है, किताब हमने तो गुणस्थान भी नहीं पढ़े, हमने तो ये भी नहीं पढ़ा, हम तो कभी आए ही नहीं, हमने तो सुना ही नहीं है, पहले तत्वार सूत्र तो पढ़ना पड़ेगा ना, कि शेर ने कौन सा तत्वार सूत्र पढ़ा था, किसने पढ़ाया था उसको, हाथी को किसने पढ़ाया था, हो जाता है। मोहित भाई बहुत सरल काम है, धर्म बहुत सरल है और जितनी जटिलता है वो सब धर्म का दिखावा है, जितनी जटिलता दिखती है वो सब धर्म का प्रदर्शन है और प्रदर्शन में धर्म नहीं है, धर्म जहां होता है वहां प्रदर्शन नहीं होता है, इसलिए जितना प्रदर्शन दिखेगा समझ लो ये धर्म नहीं है। ये जितना सब दिख रहा है ना, विधान कर लिया, पूजन कर ली, ये कर दिया, शोबाजी जितनी सब चल रही है, इसका मतलब वो धर्म नहीं है, क्योंकि धर्म परतंत्रता में नहीं होता। अच्छा माइक लगा होगा तो धर्म होगा, ये स्पीकर नहीं होगा तो धर्म नहीं होगा। मुकुंद भाई धर्म का संबंध स्पीकर से, धर्म का संबंध इस कैमरे से, धर्म का संबंध पब्लिक से, कितने लोग सुनने के लिए आते हैं, इसका मतलब सुनाने वालों को ही धर्म होगा, सुनने वालों को नहीं होगा। क्या क्या समझ रखा है हमने धर्म के नाम पर, धर्म के नाम पर भ्रम पाल रखे हैं हमने, धोखे में है। धर्म के लिए बाहरी किसी चीज की जरूरत नहीं है, धर्म उसका नाम है जहां बाहरी कोई चीज की जरूरत नहीं हो, बाहर में कुछ भी नहीं चाहिए तो धर्म होता है, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। किसान रोटी की तो जरूरत होगी, अरे धर्म के लिए कितने डॉलर लगते होंगे, डॉलर से धर्म होता है, हर बात में डॉलर क्यों दिखते हैं, उससे धर्म का क्या संबंध है। किसान कंप्यूटर तो जानना पड़ेगा, अच्छा कौन सी लैंग्वेज जानने वालों को सम्यक दर्शन होता होगा, गुजराती वालों को या हिंदी वालों को, दोनों को हो सकता है। और हिंदी और गुजराती दोनों नहीं जानते हो तो सर इंग्लिश तो जानना चाहिए थोड़ा, इंग्लिश के बिना तो कैसे होगा, संस्कृत प्राकृत जानना पड़ेगा। अरे हमारे मनुष्यों की जैसी एक भी भाषा नहीं जानने वाले त्रियंचों को भी हो जाता है, इसका मतलब सम्यक दर्शन भाषा से प्रभावित नहीं होता, सम्यक दर्शन के ऊपर भाषा का फाउंडेशन नहीं है। ये सम्यक दर्शन की चर्चा चल रही है, जो उमा स्वामी आचार्य श्रद्धा की बात बतलाते हैं, जो उमा स्वामी आचार्य अंदर की बात बतला रहे हैं, तुम बाहर से देखना चाहते हो, प्रॉब्लम यहाँ हो रही है, चीज अंदर की है तुम देखना चाहते हो, बाहर से फिर कहते हो सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है। अंदर में होगा सम्यक दर्शन, मतलब आंतरिक क्रांति, अंदर की जो क्रांति है, श्रद्धा के लेवल पर जो क्रांति हुई है, उस क्रांति का नाम है सम्यक दर्शन। ये कोई अपूर्व क्रांति है, ये कोई अभूतपूर्व क्रांति है। जब सम्यक दर्शन रूपी क्रांति अंदर में होती है तो फिर कर्म चले जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं कर्म, मोक्ष मार्ग शुरू हो जाता है, अतीन्द्रिय आनंद शुरू होता है। उसका नाम है भेद विज्ञान। मूंगफली छील करके खाने की बात कह रहा था, सबको आता है ना, किसी को नहीं आता हो तो सिखाऊं, मूंगफली छील करके खाना तो सबको आता है, सब जानते हैं। ये जो शरीर है ये है उस मूंगफली का छिलका, ये ऊपर का आवरण है, और इस छिलके के अंदर जो बैठा हुआ व्यायक भगवान आत्मा है, बोले वो उस मूंगफली के छिलके के अंदर का माल है। और सुनना, वो जो अंदर का माल है, जब आप मूंगफली को छीलते हो तो छिलका बिल्कुल ऊपर की ऊपर अलग निकल जाता है, वो छिलका उसके ऊपर टच नहीं रहता है मूंगफली के ऊपर। मूंगफली जब छीलते हैं तो इसका मतलब अंदर का तत्व उस छिलके से अनटच है, कि टच है उससे। ऐसे ही हमारा आत्मा भी इस शरीर के अंदर रहता हुआ शरीर से बिल्कुल अनटच है, शरीर को छुआ के नहीं, कभी आत्मा कभी शरीर को छूता नहीं है, आत्मा कभी शरीर को टच नहीं करता है, टच कर ही नहीं सकता है, क्योंकि आत्मा अस्पर्श स्वभावी और शरीर स्पर्श और गंध वर्ण वाला। आत्मा ने शरीर को यदि छू लिया होता तो मैं ऐसा कहता हूं शरीर से आत्मा निकलने पर आत्मा रेड कलर का निकलता। यहां बैठे हैं मान लो, और बैठे बैठे एकदम डेथ हो गई, डेथ हो गई तो क्या हुआ उसका मतलब, डेथ मतलब क्या होता है? नहीं भाई, डेथ मतलब आत्मा चले गया। कहां से चला गया? शरीर से। अभी यहां बैठे हुए यदि मेरी डेथ हो जाए तो आप क्या कहोगे? आत्मा चला गया। तो कहां से गया हुआ? इस गेट से गया हुआ है, इस वाले से, किधर से निकला हुआ? किसी कोई देख पाएगा उसको? नहीं देख सकते, आत्मा अरूपी है इसलिए देख नहीं सकते उसको। तो यदि वो शरीर से निकला है और शरीर के अंदर पूरा ब्लड है, ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, पूरा हड्डी है, मांस है, यदि आत्मा शरीर को छू रहा होता, अंदर टच होता, तो निकलते समय रेड कलर का होकर के निकलता, आपको दिख जाता। आपको दिखता नहीं है, इसका मतलब यह है कि आत्मा शरीर में रहते हुए भी शरीर से भिन्न एक तत्व है, उसकी अनुभूति जब होती है उसे कहते हैं सम्यक दर्शन। ये श्रद्धा का स्तर है। पहली परिभाषा दी है सम्यक दर्शन के संदर्भ में, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। पढ़ा आपने दूसरा सूत्र? दूसरा सूत्र क्या है एक बार बोलिए सभी। पहला सूत्र देखो, धीरे धीरे बोलना। पहला बोलेंगे सबसे पहले, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। बोलिए सब, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। याद हो गया सभी को? मोक्ष मार्ग पे चलना है अपने को, ये मोक्ष के मार्ग पर चलना तो है साहब, लेकिन हमें ऐसे लगता है कि मोक्ष का मार्ग बहुत कठिन होगा। हमें ऐसे लगता है कि जिस मोक्ष के मार्ग पर आप चलने की बात कह रहे हो तो बहुत कठिन काम है साहब। हमने देखा है साधुओं को, संतों को, त्यागियों को, व्रतियों को, हमने ऐसा देखा है। जब हम साधुओं को, संतों को देखते हैं, नंगे पांव चलते हैं, धूप में चलते हैं, पैरों में छाले हो जाते हैं, तो ऐसे मोक्ष मार्ग पर चलना तो साहब हमारे तो बस की बात नहीं है। मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए क्या नंगे पांव चलना पड़ेगा? मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए कैसे चलना पड़ेगा बोलो? भूखे रहना पड़ेगा? आसान थोड़ी ना मोक्ष मार्ग पर चलना। बहुत आसान है, क्योंकि जिसे आपने मार्ग समझ रखा है वो मार्ग नहीं है। असली मार्ग अंदर में है, और अंदर में जाने के लिए आपको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी बाहर में करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ श्रद्धा बदलने की जरूरत है और मोक्ष मार्ग प्रकट हो गया। सिर्फ श्रद्धा बदली है और मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाता है। श्रद्धा के बदलने का नाम किसकी श्रद्धा? बोले तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। बोलिए सूत्र, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्व अर्थ श्रद्धानम, तत्व अर्थ के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। तत्व माने होता है भाव, और अर्थ माने होता है वस्तु, वस्तु का भी श्रद्धान, और उसके भाव माने उसकी पहचान का चिन्ह, उसके लक्षण, उसका भी श्रद्धान। नमक क्या होता है? नमक को पहचानना, बर्नी में रखे हुए, डब्बे में रखे हुए नमक को पहचानना, यह है अर्थ को पहचाना है। क्या मुकुंद भाई, अर्थ को पहचानने का मतलब उस वस्तु को पहचानते हैं हम, देख करके पहचान लिया हमने ये क्या चीज है। और तत्व माने क्या चीज है? कि वो नमक खारा होता है। समझ में आ रही है बात? तत्व अर्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन समझा रहे हैं भाई। सम्यक दर्शन मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है। मोक्ष महल की पहले स्टेप का नाम है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन नहीं होगा तो मोक्ष रूपी महल में कदम नहीं रख पाएगा। सुखी होने की दिशा में पहला चरण होता है सम्यक दर्शन। हमने क्या कहा? तत्वार्थ श्रद्धानम। उमा स्वामी आचार्य ने क्या कहा? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। बोले तत्व और अर्थ इन दोनों के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। तत्व माने क्या बतलाया रमेश भाई? तत्व माने लक्षण, तत्व माने भाव, तत्व माने मूल चीज, तत्व माने उसके मूल एलिमेंट, ठीक है ना? वो है तत्व। तत्व मतलब समझिए ना, जैसे आत्मा का तत्व बतलाओ, बोले ज्ञान दर्शन ये आत्मा का तत्व है। और अर्थ बताओ, अर्थ माने तो पूरी वस्तु है। तो तत्व अर्थ दोनों की जब श्रद्धा होती है तो सम्यक दर्शन होता है। नमक को तो हम पहचानते हैं, लेकिन भाव वासन होना बहुत जरूरी है। नमक को पहचानते हैं, आपको भाव वासन है या नहीं है? अभी हम भोजन करके आए मोहित जी के यहाँ, सब्जी में नमक कम था क्या? नहीं, कह दिया था वहीं पे, ऐसा नहीं सबके सामने कह रहा हूँ। अब बात बोलो, नमक कम है और उन्होंने ला करके रखा कि ये रखा नमक, आप ले लो। नमक रखा है वहाँ, आप ले लो। अब हमने तो कभी डाला नहीं था नमक, हम तो समझते नहीं। अर्थ तो पहचानते हैं, तत्व नहीं पहचान रहे। समझ में आ रही है आप? तत्व नहीं पहचान रहे मतलब उस नमक में कितनी क्वांटिटी में कितना खारापन होता है, ये भाव वासन हमारे को नहीं है तो क्या होगा? कितने एक प्याले सब्जी में चार चम्मच तो नमक डलेगा? इतना सा भी नहीं, ज्यादा कम है तो और डालूं? चार चम्मच से कम करूं? क्यों बच्चे में लग रहे हो? देखो भाव वासन कितना जरूरी है। हमने उठा करके चार चम्मच डाल ली उसमें, अब क्या होगा? तो खाने लायक नहीं बचेगा। इसका मतलब किस चीज की जरूरत है? जरूरत है उस वस्तु को पहचानने की और उस वस्तु के भाव को भी पहचानने की। ये तत्व मतलब जीव को भी पहचानो, अजीव को भी पहचानो, और जीव और अजीव की पहचान के जो चिन्ह है उनको भी पहचानो। पहचान के चिन्ह को नहीं पहचानेंगे तो शरीर को आत्मा मानने का भ्रम तो सदा से चला आ रहा है अनादिकाल से। ये बहुत बड़ा भ्रम है। मैं गोरा हूँ, काला हूँ, मोटा पतला हूँ, जो भी अपने आप को मिरर के सामने खड़े होकर के मैं कितना सुंदर दिखता हूँ, ये क्या हो गया, ये वजन कितना बढ़ गया, तो फिर मशीन पे चढ़ करके दिखता है इतना कैसे बढ़ गया वजन, तो तेरे कंट्रोल में नहीं है। नौकर्म में तेरी चलती नहीं है। नौकर्म में किसका कंट्रोल चलता है डॉक्टर साहब? द्रव्य कर्म का कंट्रोल है, तुम्हारा कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर। श्रद्धा करो इस बात की, ये है तत्वार्थ श्रद्धा। अजीव की श्रद्धा करो, धर्म द्रव्य की श्रद्धा करो, अधर्म द्रव्य की श्रद्धा करो, आकाश की श्रद्धा। काल पर भरोसा है या नहीं आपको? काल नाम का कोई द्रव्य है, अजीव नाम का तत्व है, ये भरोसा है या नहीं आपको? आश्रव नाम का तत्व, बंध नाम का तत्व, इन सब तत्वों के ऊपर श्रद्धा, इन सब के ऊपर भरोसा, इन सब के स्वरूप को जानना पहचानना, तब होता है सम्यक दर्शन। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्व अर्थ की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। चलो उत्पत्ति की अपेक्षा से दो भेद बतलाते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस सम्यक दर्शन के कितने भेद किए? दो भेद। सूत्र नंबर 3 आपकी पुस्तकों में प्रथमोध्याय में 3 नंबर का सूत्र देखिए, 3rd नंबर सूत्र। तन्निसर्गाद अधिगमाद्वा, बोलने के लिए कहना पड़ेगा ना, तन्निसर्गाद अधिगमाद्वा, तन्निसर्गाद अधिगमाद्वा, थोड़ा कठिन लग रहा है बोलने में, तन्निसर्गाद अधिगमाद्वा, तन्निसर्गाद अधिगमाद्वा, क्या शब्द है, क्या कहना चाहते हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है हमारे को। ये क्या पकड़ा दिया महेंद्र भाई हाथ में है? ये क्या हाथ में पकड़ा दिया आपने, ये क्या सब्जेक्ट ले लिया है? तन्निसर्गाद अधिगमाद्वा, तन त आधा न, जैसे तोड़ते हैं वो न का हो जाता है तो, तत्, क्या इसको तोड़ते ही क्या होगा, न का हो जाएगा तो तत् शब्द निकलेगा इसमें से, और आगे है निसर्गात, निसर्गात दो है ना, दो का तो निसर्गात, और दो में से अ निकला अधिगमात्वा, क्या तत् निसर्गात अधिगमात वा, माने वो सम्यक दर्शन निसर्गज भी होता है और अधिगमज भी होता है, दो प्रकार से सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। सम्यक दर्शन कैसे उत्पन्न होगा, सम्यक दर्शन कैसे प्रकट होगा, देखो तो वह निसर्गज भी है और अधिगमज भी है, तो समझ नहीं आया निसर्गज क्या होता है, स्वभाव से नैसर्गिक, नैसर्गिक मतलब स्वाभाविक, स्वभाव से हो, अपने आप ही हो, कोई बाहर में उपदेश देने वाला नहीं है, बाहर में कोई समझाने वाला नहीं है, बाहर में कोई बताने वाला नहीं है, कोई उपदेश दाता नहीं है, क्या जैसे श्रीमद जी के गुरु कौन थे, कोई नहीं थे, कौन थे उनके गुरु, किससे पढ़ा था उन्होंने, किससे सीखा था, किससे ज्ञान प्राप्त किया था, उनके गुरु का नाम कहीं नहीं मिलता है। छोटे से थे, बालक अवस्था में उन्होंने देखा डेड बॉडी को, स्वर्गवास हो गया, उनको ले जाते हुए देखा, शमशान में जलाते हुए देखा, भेद विज्ञान हो गया उनको, अलग अलग जान लिया उन्होंने, कितना कहां से हुआ। माने निसर्गज किसे कहते हैं, निसर्गज का अर्थ क्या है, निसर्गज माने स्वभाव से, निसर्गज माने जो किसी के उपदेश से नहीं हो, निसर्गज माने जिस सम्यक दर्शन के उत्पन्न होने के काल में, प्रकट होने के काल में बाहर में कोई भी व्यक्ति नहीं दिखाई देवे बताने वाला समझाने वाला, उस सम्यक दर्शन का नाम निसर्गज है। पॉइंट समझ में आया, जिस सम्यक दर्शन में उपदेशदाता कोई नहीं हो, समझाने वाला कोई नहीं हो, बताने वाला कोई नहीं हो, गुरु कोई नहीं हो, निमित्त बाहर में कोई नहीं दिखाई दे रहा हो, मोहित भाई क्या कहलाएगा वो, निसर्ग सम्यक दर्शन। नहीं, महावीर स्वामी का नहीं ऐसा। अभी दूसरे प्रकार का सम्यक दर्शन का भेद क्या नाम दिया, अधिगमज, अधिगमज, अधिगम कहते हैं ज्ञान को, अधिगम माने ज्ञान से, परोपदेश से, किसी के उपदेश से जो तुमने दर्शन हुआ हो उसका नाम है अधिगमज। एक में उपदेश देने वाला कोई नहीं दिख रहा है, बाहर में कोई नहीं है। मंदिर आए, यहाँ आकर के बैठे, सामने भगवान की प्रतिमा देखी, कोई नहीं है, उनको देखा और पता नहीं हो गया सम्यक दर्शन, शांत बैठे सम्यक दर्शन हो गया। उन्हें ये कौन सा सम्यक दर्शन है? निसर्गज। इस सम्यक दर्शन का नाम है निसर्गज। दूसरे प्रकार का सम्यक दर्शन है अधिगमज। अधिगमज मतलब जैसे शेर को सम्यक दर्शन के लिए दो मुनिराज उतर करके आ गए थे, शेर को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई ना, क्या शेर की पर्याय में महावीर भगवान को 10 भव पहले जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई तो जंगल में वो शेर का जीव हिरण को फाड़ के खा रहा था। हरी भाई, हिरण को फाड़ के खा रहा था ना वो शेर, सम्यक दर्शन हुआ उस समय क्या कर रहा था शेर बताओ? हिरण को फाड़ के खा रहा था, मांस खा रहा था, मांस भक्षण कर रहा था। एक मांस भक्षी जीव को सम्यक दर्शन हो गया, महेंद्र भाई की गलत बात है। और ऐसे मांस भक्षण करने वाले को मुनिराज ने आकर के उपदेश दे दिया, जच नहीं रही ये बात हमारे को। ऐसे कैसे मुनिराज ने ये नहीं कहा होगा, भैया देख हम तेरे को उपदेश देने के लिए आए हैं, कुछ धर्म की चर्चा करेंगे, तो एक काम कर हाथ वाथ धो के आ, थोड़ा कुल्ला करके आ, तो तेरे को शोभा नहीं देता है। ऐसा किया होगा? कुछ नहीं किया मुनिराज ने, ऐसा कुछ नहीं किया और उपदेश दे दिया और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, जब हो गया। अरे भाई बहुत अच्छी बात बताइए, तो हम भी खाएंगे क्या? और सम्यक दर्शन तो हो जाएगा, सम्यक दर्शन में क्या है? आप जैसे कोई भी आकर के उपदेश दे देगा और सम्यक दर्शन हो जाएगा, भाई साहब सुनो, मांस खाते खाते शेर को सम्यक दर्शन नहीं हुआ था क्या मुकुंद भाई? मांस भक्षण करते करते सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, शराब पीते हुए सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। जीवन में जब तक मध्य मांस मधु का त्याग नहीं होगा तब तक सम्यक दर्शन की पात्रता नहीं है। सम्यक दर्शन प्रकट करना चाहते हैं तो पहले दूर से हाथ जोड़ने पड़ेंगे उससे, इनसे दूर हटो मध्य मांस मधु से। इतना ही नहीं, उसकी अनुमोदना से भी दूर, उसकी अनुमोदना भी नहीं, उनकी प्रशंसा भी नहीं, उनके पास में उठना बैठना भी नहीं। इतनी दूरी यदि आप बनाने की हिम्मत रखते हो तो हम कह रहे हैं आप सुखी होने के लिए पात्र जीव हो, कलेक्शन होगा, ऐसे नहीं चलेगा काम। आपके यहाँ स्कूल में बच्चों के एडमिशन के लिए सिलेक्शन होता है कि नहीं? और जॉब के लिए सिलेक्शन होता है कि ऐसे हो जाता है जॉब मिल जाती है? इजी होगा यहाँ तो, अमेरिका में तो
नहीं,
सही है,
सिलेक्शन
होता है, तो सिलेक्शन टफ होता है कि इजी होता है? वो टफ होता है, क्या बात कर रहे हो? मैंने जॉब के लिए टफ है सिलेक्शन, तो सम्यक दर्शन के लिए इजी होगा काम? ये बहुत टफ है, और इसके लिए हमारे को प्रिपेयर होना पड़ेगा पहले से। क्या कितना कैसे प्रिपरेशन करनी पड़ेगी हमारे को उसके लिए? इंटरव्यू के लिए जाने के लिए प्रिपरेशन करता है कि नहीं? पहले से बच्चे का एडमिशन कराने के लिए जाना हो तो बच्चा तो तैयारी करता ही है, उसको तो कराते ही है, उसके माँ बाप भी तैयार होके जाते हैं, इतनी तैयारी चलती है इतनी दूर तक, तब जाके वो पात्र है, तब जाके फिर होगा तो होगा। लेकिन फर्स्ट स्टेप है ये मध्य मांस मधु का त्याग, मांसाहार का त्याग, शराब पीने का त्याग, जीवन पर्यंत के लिए त्याग, सपने में भी विकल्प नहीं आए उसके प्रति, और ऐसे खाने पीने वालों के साथ में उठना बैठना नहीं, उनकी अनुमोदना नहीं, उनकी चर्चा नहीं। अच्छा शेर को कैसे हो गया था फिर? हमें बेवकूफ बना रहे हो, हमने पढ़े हैं शास्त्र, मुंह से खून टपक रहा था उसके, और हमने कई चित्र देखे हैं ऐसे मंदिरों में, बिल्कुल महाराज को पानी नहीं लेकर के, महाराज ने पहले अपने कमंडल से हाथ धुलाए होंगे उसके शेर के, नहीं किया था ना ऐसा, कैसे हो गया? सुनो भाई, त्याग भी अंदर में होता है और ग्रहण भी अंदर में होता है। आप बाहर में त्याग देख रहे हो, हम कह रहे हैं अंदर से त्यागी हो गया था। आप मुंह में मांस है, उसके पंजे खून से लथपथ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये कह रहा हूं कि वो शेर मांसाहार का त्यागी हो गया था, उसने त्याग कर दिया था। मुनिराज का उपदेश सुनने के बाद नहीं, पहले त्याग किया और फिर उपदेश सुनने के बाद में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। किसान मुंह में मांस से फिर भी त्याग कि हाँ श्रद्धा बदल गई ना, ये खाने लायक नहीं है, आज के बाद कभी नहीं खाऊंगा, मुंह में घास होते हुए भी ऐसा त्याग हो सकता है, ये जैन दर्शन का त्याग है। ये बड़ी अद्भुत बात है भाई साहब, ग्रहण भी अंदर में होता है और त्याग भी अंदर में होता है। पर वस्तु का ग्रहण और त्याग तो तुम्हारे त्रिकाल नहीं हो सकता, न तुम पर वस्तु का ग्रहण कर सकते हो न तुम पर वस्तु का त्याग कर सकते हो, ये तुम्हारे हाथ की बात नहीं है, क्योंकि वो किसके हाथ में है? द्रव्य कर्म के हाथ में है। तो मैं नहीं थे, ये नौकर में सारे संयोग सारी उठापटक ये किसके हाथ में है? ये सब इसके हाथ में है, ये द्रव्य कर्म के हाथ में है। इसलिए पर पदार्थों को इकट्ठा करने में, जोड़ने में, लाने में, हटाने में तुम्हारी नहीं चलती है, मत चलाओ। तो फिर त्याग नहीं करूं, आलू प्याज नहीं छोड़ना पड़ेगा, मध्य मांस नहीं छोड़ना पड़ेगा, कि यहां से छूटेगा वो संयोग आदि की बात अलग है, यहां से छूटेगा, भाव से छूटेगा, लेने लायक नहीं है, ग्रहण करने लायक नहीं है, वहां छूटता है। तो शेर को जो उपदेश दिया मुनिराजों ने, वो कौन सा सम्यक दर्शन हुआ शेर को? अधिगमन। निर्वय। दो प्रकार के सम्यक दर्शन कहे ना, एक निसर्गत सम्यक दर्शन, एक अधिगम सम्यक दर्शन। कौन सा सूत्र पढ़ा रहा हूं मैं? तन निसर्गाद अधिगमाद्वा, तीन नंबर का सूत्र पढ़ा रहा हूं। हरीश भाई देखो तो क्या कह रहे हैं यहाँ तीन नंबर के सूत्र में, कि वो सम्यक दर्शन निसर्गज और अधिगमज दो प्रकार का होता है। अब कैसे भी हो सकता है? देखो, जिनको निसर्गज होता है उनके बारे में शास्त्रों में कहा है कि उन्होंने पहले कभी सुना होगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, ये भी बड़ी गजब की बात है। जिनको निसर्गज होता है, निसर्गज मतलब स्वभाव से अभी कोई नहीं है, उनको पहले कभी ना कभी किसी का उपदेश सुनने को मिला था। समझ में आ रही है बात? पहले कभी ना कभी उन्होंने उपदेश सुना था, तो फिर उसको अधिगमज कहें या निसर्गज कहें? वर्तमान में देख रहे हैं तो हम कह रहे हैं अधिगमज नहीं है, निसर्गज है, वर्तमान में उपदेश नहीं दिख रहा, लेकिन वो भी पिछले भाव में कभी देशना सुनी थी इसलिए अधिगमज है। नरकों में सम्यक दर्शन बहुत आसान होता है मुकुंद भाई, क्या पता है आपको? मालूम है नरक में सम्यक दर्शन बहुत सरल है। कितना सरल है कि नरक में जाने के बाद यदि आपको इतनी बात याद आ जाए कि हमने जैन सेंटर में वो जयपुर से आए थे गोदा जी, उनसे सुना था कि जैन सेंटर में कौन से ट्यूजडे वेडनेसडे हैं, फ्राइडे नहीं है, थर्सडे, तीन दिन वो हमने सुना था महेंद्र भाई से। कहां पे याद आ जाए? ये नरक में इतनी सी बात याद आ जाए सम्यक दर्शन हो गया, सुना था इतना सा याद आ जाए सम्यक दर्शन हो जाता है सब, इतना आसान है नरक में सम्यक दर्शन की प्राप्ति। आपको क्या लग रहा है? आप क्या सोच रहे हैं? मुझे मालूम है, मेरे को सब यार हम लोग यहाँ बहुत इतनी मेहनत कर रहे हैं, सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है, नरक में इतने सस्ते में मिल जाता है क्या? तो जहाँ चीज सस्ते में मिलती है ना व्यक्ति उधर भागता है, ये ह्यूमन नेचर है। जहाँ भी चीज सस्ते में मिलेगी व्यक्ति उधर भागेगा, ये सस्ते के चक्कर में ये कई चक्कर लगा लेता है, सस्ते के चक्कर में ये व्यक्ति बहुत टाइम वेस्ट कर देता है, सस्ते के चक्कर में पड़ोस में मिल रही है जो चीज, लेकिन 10 किलोमीटर जाएगा सस्ता मिल रहा है वहां। सम्यक दर्शन बहुत सस्ते में मिलता है नरक में, बोलो क्या करना है? प्लानिंग है चलने की, सोच रहे नरक में चल के ले लेंगे, क्या क्या करें? लेकिन भाई इतना सस्ता तो है, लेकिन नरक में वो बात याद नहीं आती है। याद आ जाए तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए, लेकिन याद नहीं आती है, वहाँ दिमाग में वो बात आती नहीं है, इसलिए बहुत कठिन हो जाता है। ये अधिगमत सम्यक दर्शन पुरानी बातों को याद कराता है। निसर्गत सम्यक दर्शन होता है तो वो अधिगमत पना उसमें गर्भित है, क्योंकि पिछली बात याद आई है, ठीक है ना। और जब अधिगमत सम्यक दर्शन होता होगा, माने उपदेश से सम्यक दर्शन होता होगा, तो उपदेश से ही हो जाता होगा या स्वभाव के अवलंबन से होता होगा? स्वभाव के अवलंबन से होता है। इसका मतलब जो जो अधिगमज है वो निसर्गज भी है, और जो निसर्गज है वो अधिगमज भी है, फिर दो भेद क्यों किए वर्तमान में देखने की अपेक्षा से? वर्तमान में जैसा दिख रहा है उस अपेक्षा से भेद किए गए। मैं समझता हूँ दोनों बातें समझ में आ गई होगी। निसर्गज अधिगमन समझ में आ गया, सन निसर्ग अधिगमत समझ में आ गया। शिष्य ने प्रश्न किया कि साहब आपने कहा था तत्वार्थ सिद्धांत सम्यक दर्शन, तत्वार्थ क्या चीज है? तो बोले ये सात हैं। कौन कौन से? नाम बता दिए, सबको याद है, जल्दी करा दिए थे हमने याद। चौथे नंबर का सूत्र बहुत सरल है, जीवा जीवास्त्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षा तत्व। बोलिए, जीवा जीवास्त्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षा तत्व। कठिन तो नहीं है ये वाला तो बिल्कुल भी। जीवा जीवास्त्रव है, कितना सरल है। जीवा जीवास्त्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षा तत्वम। जीवा जीवास्त्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षा तत्वम। आप पूरा एक साथ बोल सकते हैं, जीवा जीवास्त्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षा तत्वम। बोलिए, गिरीश भाई
मुश्किल है,
क्या बात कर रहे हैं आप? मुश्किल कहेंगे तो फिर ये इनका क्या होगा? छोटे जो है, है? आप इतने बड़े है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है मुश्किल। ये संस्कृत का है, बताओ मैं इसमें कौन सा अक्षर संस्कृत का है? है? कौन सा अक्षर संस्कृत का है इसमें? सब हिंदी लग रही है मेरे को तो। हाँ और क्या, ऊपर से सर पर से लाइन निकाल दो तो गुजराती हो जाता है। तो आप गुजराती हैं? गुजराती में देना चाहिए था अपने को, कोई बात नहीं। तो अभी इसमें सात तत्वों के नाम बतलाए हैं। पहला है जीव, दूसरा है अजीव, जीव अजीव दिख रहे, फिर दिख रहा है जीवा जीवास्त्रव, जीवा जीव आश्रव, उसमें से आश्रव निकला है। बंद दिख ही रहा है, संवर भी दिख रहा है, निर्जरा भी दिख रहा है, और मोक्ष भी दिख रहा है। मोक्ष तत्वम, बोले ये तत्व है, ये सात तत्व हो गए हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े अपन। हाँ पांच नंबर देखो, क्योंकि महेंद्र भाई इतना यदि अपन थोड़ा थोड़ा आगे नहीं बढ़ेंगे ना, क्या तो चक्कर ये होगा कि लोग कहेंगे कि इतने पेज क्यों दिए हमारे हाथ में, क्या? क्योंकि ये दो चार पेज दिए हैं तो इनको अपने को दो चार दिन में उपयोग कर लेना चाहिए, नहीं तो फिर वो कल कही थी ना एक बात कि पूरी जिंदगी निकल जाएगी, तत्वार सूत्र पूरा नहीं होगा। अपन पूरा करेंगे इसको। देखो पांच नंबर का सूत्र है, बहुत सरल है, मजेदार चर्चा है। नाम स्थापना द्रव्य भाव तत्सन्यास है। नाम स्थापना द्रव्य भाव तत्सन्यास है। नाम, देखो क्या क्या शब्द है। पहला शब्द है नाम। नाम तो आप लोग जानते हैं सब, नेम, नेम को नाम कहते हैं हिंदी में, सबका अपना अपना नाम है। अच्छा, जिसका जो नाम है, इनका नाम है मोहित, तो ये सबको मोहित करते हैं क्या? नहीं करते। इनका नाम है मोहित, जिसका भी जो नाम हो उस नाम संबंधी गुण उस व्यक्ति में होना जरूरी नहीं है। किसी का नाम भगवान हो सकता है, महावीर भी हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है महावीर। तो आप लोग अर्घ चढ़ाते हैं उनको नहीं चढ़ाते? माने किसी का नाम महावीर है तो अर्घ नहीं चढ़ाते आप उनको, और किसी का नाम ऋषभ है तो उनको तो चढ़ाते होंगे, उनको भी नहीं चढ़ाते। क्यों? क्योंकि नाम मात्र है, गुण कुछ नहीं है। ठीक है, पहला शब्द दिया है नाम, दूसरा शब्द है स्थापना, नाम स्थापना, तीसरा शब्द है द्रव्य, और फिर कहा है भाव। चार शब्द हो गए, नाम स्थापना द्रव्य और भाव, इनको कहते हैं निक्षेप। चारों को निक्षेप कहते हैं, नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप, भाव निक्षेप। कह रहे तह नाम स्थापना द्रव्य भाव तह, भाव तह इन सब से तत् न्यास है, उन सब को जानो। किनको? सात तत्वों को। पीछे जो सात तत्व कहे थे उन सात तत्वों को कैसे जाने? बोले नाम से, स्थापना से, द्रव्य से और भाव से। किसी भी वस्तु को जानने के लिए ये चार पद्धति कही है। सबसे पहले किसी भी चीज के बारे में आपको जानना है क्या? जैसे मुझे पता नहीं था, मैंने पहली बार देखा, मैंने कहा ये क्या है, ये क्या है? अरे पंडित जी ये मोबाइल है। क्या, क्या कहा आपने? ये मोबाइल है। तो ये मोबाइल है मतलब मोबाइल इसका नाम है, इसे इसे मोबाइल शब्द से पुकारा जाता है। क्या? जब मोबाइल शब्द पुकारा जाता है तो इस तरह की कोई आकृति हमारे दिमाग में बनती है। फर्स्ट स्टेप है, किसी भी चीज के बारे में जानने के लिए सबसे पहले उसका नाम जानो। क्या? किसी भी फल को खाने से पहले, उसको उपयोग में लेने से पहले, उसको खरीदने से पहले फर्स्ट स्टेप क्या है, ये क्या चीज है? तो आप क्या कहेंगे? उसका नाम बताएंगे। पहले नंबर पर क्या बतलाते? नाम। नाम कंपलसरी चीज है, बिना नाम के हम उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। माने हमारे को कोई चीज तलाशनी है, करनेश भाई, तो आप उस चीज को तलाश सकते हैं गूगल से? नाम के बिना नहीं तलाश सकते। आप गूगल पर हर चीज तलाश सकते हैं, जो चाहेंगे वो फाइंड आउट हो जाएगी उस पर, लेकिन मेरे को ऐसी चीज तलाशनी है, मेरे को नाम नहीं पता उसका। क्या अब आप तलाश सकते हैं क्या? पंडित जी नाम तो बताओ कम से कम, किसको तलाशना है? पहली चीज नाम। नाम के लिए, नाम निक्षेप किसका नाम है? बिना गुण धर्म के किसी भी वस्तु की पहचान के लिए, किसी भी व्यक्ति को पहचानने के लिए, उसका काम चलाने के लिए, उसके माँ बाप ने जो एक निरर्थक नाम रख दिया वो क्या कहलाएगा? नाम निक्षेप। शब्द तो बहुत अच्छा है, नाम तो बहुत अच्छा है, लेकिन जैसा नाम है वैसा काम नहीं है। जैसे बोलते हैं ना, क्या है, नाम बड़े और दर्शन छोटे, ऊंची दुकान फीके पकवान। नाम नाम ही नाम अच्छा है बस। नाम तो बहुत अच्छा है साहब आपका, नाम तो अच्छा है। क्यों अच्छा नाम? मैं आपसे पूछता हूँ, किसी ने मेरे से कहा पंडित जी कोई बच्चे का नाम बतलाओ ना कोई अच्छा सा, कोई अच्छा सा नाम बतलाओ कोई। हमने कई नाम बतलाए, अरे कॉमन है, तो कई बार सुना है, ये तो कॉमन है। आजकल ऐसा बहुत चलता है, कॉमन नहीं होना चाहिए नाम, यूनिक होना चाहिए, किसी का नहीं। ऐसा नाम रखो जो किसी का नहीं हो। बहुत सोचा बहुत सोचा, कुछ नहीं दिख रहा था, कुछ नहीं पूछ रहा था, कई बार फोन आ रहे थे, तो हमने कहा आपको इतना ही ज्यादा यूनिक नाम चाहिए तो रावण रख लो ना, किसी का नहीं मिलेगा। अरे क्या बात करते हो आप, मैंने कहा सच कहता हूँ किसी का नहीं है। रावण नाम देखा आपने किसी का है? वो लंकाधिराज जिसको रामचंद्र जी ने जीता था, उस व्यक्ति के अलावा उसके बाद आपने हजारों सालों में कभी किसी का नाम रावण सुना है? रावण नाम का कोई दूसरा व्यक्ति हुआ, क्यों नाम में क्या खराबी है, नाम में क्या खराबी है? अच्छा इतना ही खराब नाम था तो रावण के माता पिता ने नाम क्यों रखा? इसका मतलब शब्द में तो खराबी नहीं है, नाम में तो खराबी नहीं है, ठीक है ना? वो नाम बदनाम हो गया, वो अलग मैटर है। नाम कितना, नाम निक्षेप कितना नाम है, कुछ योग्यता नहीं, किसी का भी कुछ भी नाम रख दो। लक्ष्मी सेन तो बहुत बहुत पैसे वाले होंगे जिनका नाम लक्ष्मी है, और कजोड़मल वो तो बहुत दरिद्री होंगे। कजोड़ जाओ ना, कचरे को कहते हैं कचरा भाई, कचरा भाई तो होता है ना नाम, तो कचरा भाई बिल्कुल कचरा है। अरे भाई साहब कचरा भाई बहुत बड़ा सेठ है तो नाम कचरा भाई और है बहुत बड़ा सेठ। अच्छा किसी का नाम अमरचंद हो तो फिर कभी नहीं मरेगा ना, नाम यदि अमरचंद होगा तो मरेगा कि नहीं मरेगा? तो क्या सोच के उनका नाम रखा होगा अमरचंद? नाम है भाई, कुछ दम नहीं है। नाम माने नाम, सिर्फ पहचान के लिए, इतना तो समझ लो, नाम माने पहचान के लिए। स्थापना सेकंड स्टेप, स्थापना किसका नाम है? स्थापना माने किसी की, किसी ने किसी की पहचान किसी के माध्यम से, किसी को किसी में इसके माध्यम से पहचानना, इनकी स्थापना इस चीज ने कर दी। क्या मूल चीज तो नहीं है लेकिन वैसी की वैसी किसी दूसरी चीज में उन चीजों की स्थापना कर दी जाती है। ये स्थापना दो तरह की होती है, एक होती है तद आकार, जैसा हो उसी आकार की स्थापना, जैसे श्रीमद राजचंद्र जी की स्थापना उन्हीं के आकार वाली प्रतिमा में करना, उनका जैसा आकार है, उनका जैसा रूप है, उनकी जैसी पिक्चर है, वैसी उनकी, वैसी यदि हमने कहीं प्रतिमा देखी है तो हम क्या कहेंगे, कौन है ये, किसकी प्रतिमा है? श्रीमद जी की प्रतिमा है। गुरुदेव की प्रतिमा देखी हमने और तुरंत क्या कहा कि ये व्यक्ति कौन है, ये दुपट्टे वाले, ये लकड़ी वाले, अरे गुरुदेव है, तो तुरंत हमने बतला दिया। ये कौन है, बोले महात्मा गांधी है। तो ये तदाकार स्थापना, जैसा व्यक्ति था वैसा ही आकार उनमें उसकी स्थापना, ये तदाकार स्थापना कहलाती है। एक सेकंड जो स्थापना का प्रकार है वो कहलाती है अतदाकार, अतद आकार, माने वो वैसा नहीं हो, अतदाकार स्थापना, आकृति वैसी नहीं है लेकिन फिर भी उसको उस रूप में कहा गया है। जैसे इसके लिए बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं हम दोनों प्रकार की स्थापनाओं के लिए, एक दो नहीं पचासों एग्जांपल दे सकता हूं। भगवान की प्रतिमा सामने विराजमान है, ये है तदाकार स्थापना। ऐसी थे भगवान, हाथ से हाथ धर करके बैठे हुए समूह चरण में, वैसे की वैसी आकृति है उनकी, उनका वीतरागी स्वरूप है, ये तदाकार स्थापना है। और अतदाकार स्थापना कैसी होगी? पूजा में जो चावलों में हमने स्थापना कर दी है, पीले चावल कर दिए हमने, तो चावलों को पीला करके कलर करके हमने क्या कह दिया, ये पुष्प है, उनको पुष्प कह दिया। नारियल की गोले की वो चिटक बना दी पीस उसके, ये व्हाइट कलर के थे तो हमने उनको क्या कह दिया, नैवेद्य कह दिया। नैवेद्य माने तो होता है मिठाई, लेकिन उस मिठाई की स्थापना उस व्हाइट कलर की चिटक में कर दी गई। ऐसे दीपक, तो दीपक तो अलग है लेकिन दीप की स्थापना हमने येलो कलर की चटक में कर दी। ये सब स्थापना है, ये बहुत काम होते हैं स्थापना से। आप लोग भी इस तरह की स्थापना करते रहते हो और स्थापना से काम भी चला लेते हैं। कई बार हम चेस खेल रहे हैं, कितनी काठियां होती है चेस में? 32 होगी ना, 16 अपनी तरफ है, 16 32 है। अच्छा उसमें यदि कोई चीज एक पीस उसमें से कोई गायब हो गया, खो गया, गिर गया, तो आप क्या करेंगे? टूट गया, नहीं है, और वो सिंगल पीस मार्केट में मिल नहीं रहा है, आप क्या करेंगे? चेस बेकार हो गई?
नहीं, दूसरा
कोई और चीज को वहां रख लेते हैं, उसका नाम वही दे देते हैं वो जो टूटा था उसकी जगह पर, माने वो जो मान लो उसमें से वो घोड़ा गायब हो गया, हॉर्स टूट गया, तो फिर क्या करेंगे उसकी जगह पर क्या रखेंगे आप? लकड़ी का पीस, पत्थर का, अरे कागज का टुकड़ा भी रख सकते हैं और कह सकते हैं ये क्या है, फिर वो कागज का टुकड़ा कैसे कैसे उड़ेगा, ढाई कदम चलेगा क्या? माने वो कैमल की जगह पर यदि रखा गया तो वो तिरछा चलेगा, वो चौक का टुकड़ा रख दिया हमने, वो चौक का पीस क्या है, वो चौक का पीस नहीं है भाई साहब, वो क्या चीज है, वो हॉर्स है, वो कैमल है, वो एलिफेंट है, रुक, माने उनके सबके जो जिस जगह पर उसको रखा गया है उसमें उसकी स्थापना कर दी गई है, वो स्थापना निक्षेप का विषय है, ये स्थापना की है हमने प्रतिमाओं में, ये तद आकार स्थापनाएं हैं, और वो जो काटी में हमने स्थापना की है वो अतदाकार स्थापना है, आकार तो कुछ और है उसका, हॉर्स जैसा आकार तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो हॉर्स ही मान करके पूरे खेल में हम उसको हॉर्स मान करके चल रहे हैं, ये है अतदाकार स्थापना। स्थापना समझ में आ गया क्या चीज है, नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, निक्षेप माने धरना, नाम रख दिया, स्थापना कर दी गई, ठीक है। थर्ड नंबर पर है द्रव्य, द्रव्य क्या चीज है, द्रव्य भी निक्षेप है, द्रव्य से पहचानना, द्रव्य द्रव्य और आगे है भाव, समझना बहुत मार्मिक बिंदु है, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप, द्रव्य से पहचानना और भाव से पहचानना, द्रव्य के अंतर्गत ली जाती है पास्ट एंड फ्यूचर की जो अवस्थाएं हैं उसके आधार पर बोलना, कथन करना, व्यवहार करना, ये द्रव्य कथन, द्रव्य का कथन है। द्रव्य सेम है ना, द्रव्य मतलब अनादि अनंत, द्रव्य मतलब पास्ट लाइफ में भी था, द्रव्य मतलब आगे वाली लाइफ में भी होगा, वही तो द्रव्य है ना, द्रव्य तो वही है, तो द्रव्य से देखने का मतलब क्या हुआ, उसको पास्ट के आधार पर बोल दिया, उसको फ्यूचर के आधार पर बोल दिया, ये द्रव्य निक्षेप। भाव निक्षेप से देखो तो वर्तमान में जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में कहना वो भाव निक्षेप है। कि साहब कुछ एग्जांपल से समझाओ ना, एग्जांपल से समझा देते अपने क्या फर्क पड़ता है, दूध घी, नहीं दूध घी दही को तो आप ऐसा नहीं कहते हो, कभी भी आप दही को दूध नहीं बोलते हो, नहीं बोलते हो ना, हाँ लेकिन हम तो ऐसी बात बतला रहे हैं, हमने शास्त्र की बात बतलाते हैं, हमने ऐसा पढ़ा है, ऐसा सुना है कि वो सीता, सीता को तो जानते हैं आप, रामचंद्र जी की वाइफ, वो सीता जो अभी 16वें स्वर्ग में है, वो तीसरे नरक में रावण को संबोधन करने के लिए गई, आपने सुना है ऐसा, सीता जो थी वो सीता कहाँ गई, तीसरे नरक में रावण को उपदेश देने के लिए, संबोधन करने के लिए। अब ये द्रव्य निक्षेप से तो आपकी बात सही है, लेकिन जब भाव निक्षेप से इस बात को देखते हैं तो झूठी बात है। क्या मतलब, सही बात तो ये है भाव निक्षेप से देखेंगे तो कि एक देव गति का जीव एक नारकी जीव को संबोधन करने के लिए गया, क्या रावण नरक में है, रावण नरक में है, तो यदि हम नरक में जाकर रावण नाम से आवाज लगाएंगे तो मिलेगा कि नहीं, नहीं मिलेगा, बहुत सारे मिलेंगे। अरे हम तो नाम निक्षेप वाले रावण की बात कर रहे हैं, काम वाले रावण की नहीं, कर्मों से जो रावण जैसे हैं उनकी बात नहीं चल रही है, नाम से जो रावण हैं बात उनकी चल रही है। मिलेगा कोई रावण नाम से आवाज लगाएंगे, भैया यहाँ कोई रावण नहीं रहता। अच्छा आपके यहाँ पर अभी इस जगह पर रामपाल जी को यदि मैं आवाज लगाऊं तो मिलेंगे कोई, रामपाल जी है महेंद्र भाई, रामपाल जी कोई नहीं है, क्या बात कर रहे हो, पिछले जन्म में किसी का नाम हो सकता है कि नहीं रामपाल, तो फिर अभी पुकार रहे हैं तो मिलेंगे नहीं, तो जिसका नाम पिछले जन्म में रावण था उसको नरक में जाकर के आवाज लगाओ रावण रावण रावण, तो कहा यहाँ कोई रावण नहीं रहता। सीता स्वर्ग में सीता नहीं है, सीता का अंतिम संस्कार तो यही हो गया था मध्य लोक में ही। तो एक देवगति का जीव नरक में जाकर के संबोधन करता है और हम उस बात को बिल्कुल सच्ची स्वीकार करते हैं, हमें उस बात को सुनने में समझने में स्वीकार करने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है, ये द्रव्य निक्षेप का कमाल है। आपको ऑब्जेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो, आप कैसी बात कर रहे हो, आप हमें तो जच नहीं रही है बात। हाँ सीता सीता कैसे जा सकती है, सीता नरक में जा ही नहीं सकती, स्वर्ग में गई है। सीता का जीव, सीता का यहाँ अग्नि संस्कार कर देने पर या दाह संस्कार कर देने पर जो उसका जीव स्वर्ग में चला गया था, जो वहाँ इंद्र है प्रतीन्द्र का जीव है, वो जीव स्वर्ग में जाकर के सीता को तलाश होंगे तो भी नहीं मिलेगा क्या? तो द्रव्य निक्षेप से देखते हैं तो द्रव्य किसका नाम है, पास्ट के आधार पर या फ्यूचर के आधार पर हम कह देवे उसका नाम है द्रव्य, और प्रेजेंट के आधार पर कथन करना उसका नाम है भाव। और सुनो भगवान महावीर स्वामी कौन से नंबर के तीर्थंकर हैं? 24वें नंबर के तीर्थंकर हैं पक्का। पहले नंबर के तीर्थंकर कौन है? ऋषभ देव। ये तीर्थंकर हैं, ये सब द्रव्य निक्षेप से सही है महेंद्र भाई बात, माने वो वर्तमान में तीर्थंकर नहीं है, ऋषभ देव तो सिद्ध है। ऋषभ देव तीर्थंकर है क्या? नहीं है। ऋषभ देव तीर्थंकर नहीं है, फिर भी उन्हें तीर्थंकरत्व रूप में देखना ये द्रव्य निक्षेप का काम है। अरहंत है कि नहीं है? कि नहीं है, सिद्ध है। पांच परमेश्वरियों थे, हरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु, उन पांच परमेश्वरियों में से आदिनाथ भगवान कौन से परमेश्वरी में है वर्तमान में? सिद्ध परमेश्वरी में। उससे पहले कौन से परमेश्वरी में थे? उससे पहले कौन से परमेश्वरी में थे? आचार्य उपाध्याय सिर्फ साधु थे, माने वे पहले साधु परमेश्वरी थे, फिर अरहंत परमेश्वरी हुए, फिर अरहंत परमेश्वरी से भी ऊपर बढ़कर अरहंत अवस्था भी छूटकर अब वे सिद्ध परमेश्वरी हो गए। ठीक है, सिद्ध हो जाने के बावजूद भी उनको अरहंत देखना ये द्रव्य निक्षेप का काम है। पास्ट से देख रहे हो आप उनको, बहुत तरह के एग्जांपल दे सकता हूँ मैं, एक दो नहीं अनगिनती उदाहरणों से मैं चर्चा कर सकता हूँ, करूंगा नहीं लेकिन घबराओ मत, ज्यादा नहीं करेंगे बात। इतनी बात समझ में आ गई, नाम स्थापना द्रव्य भाव तत्संन्यास है, माने नाम से स्थापना से द्रव्य से और भाव से पदार्थों का ज्ञान होता है। किसी भी पदार्थ को यदि आप जानना चाहते हैं तो नाम से जानो, स्थापना से जानो, द्रव्य से जानो और भाव से जानो। नाम स्थापना द्रव्य भाव से पहचानो, पहचान लेंगे आप, किसी को भी पहचानना होगा तो। इंद्रभूति गौतम को जानते सुनाएंगे, इंद्रभूति गौतम का नाम, गौतम स्वामी कौन थे, कौन है इंद्रभूति गौतम, कौन है जानकर है, आप मान कर रहे हो उनका सिद्ध है। ओहो इंद्रभूति गौतम सिद्ध है, भगवान है, गणगर तो मुनिराज होते हैं क्या? गणगर तो मुनिराज होते हैं, आप उनको इंद्रभूति गौतम कहकर के पुकार रहे हो, आप उनको गणगर कहकर के पुकार रहे हो, आप उनको गौतम गणगर कहकर के बोल रहे हो, इसका मतलब आप उनका अपमान कर रहे हो। अरे मैं आपसे कहता हूँ, जिस व्यक्ति ने प्रेसिडेंट पद पा लिया हो उस व्यक्ति को एमएलए के पद से पुकारना संबोधित करना ये अपमान है उसका, रहा होगा पहले। जो व्यक्ति मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री के बाद में उसकी पोस्ट बढ़ गई, वो प्रधानमंत्री हो गया, और आज हम उसे कहें कि मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ पधारेंगे, चुप रहे, यहाँ मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन गया, हाँ मुख्यमंत्री की बात कर रहा है, समझना पड़ेगा भाई साहब। तो फिर भी आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, भाई साहब वो इंद्रभूति तो ऊपर से उतर करके आएंगे नहीं आपको समझाने के लिए, वे तो वितरागी है, उनको तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, आपको क्यों नहीं होता? किताब शास्त्र में लिखा हुआ दिखा दे, इंद्रभूति गौतम गणधर गणधर लिखा हुआ, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि द्रव्य निक्षेप से किया गया कथन है। समझ में आ गई बात? द्रव्य से किया गया कथन है, इतना तो समझना है हमारे को, और क्या, अपनी समझ में ही तो सुधार करना है। भाव निक्षेप से देखोगे तो वे सिद्ध परमात्मा है, द्रव्य निक्षेप से देखोगे तो वे सिद्ध परमात्मा नहीं है वर्तमान में। वर्तमान में तो सिद्ध परमात्मा है भाव निक्षेप से, और द्रव्य निक्षेप से देखोगे तो घणधर भी कह देंगे उनको, मनिराज भी कह देंगे उनको, ऐसे प्रयोग होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, पांच सूत्र हो गए हैं यहाँ तक। पांच समझ में आ गए क्या? पांच समझ में आ गए? आगे बढ़ते हैं छठे नंबर का सूत्र, प्रमाण नयैर अधिगमे है, प्रमाण नयैर अधिगमे है, प्रमाण नयैर अधिगमे है, प्रमाण नयैर अधिगमे है। क्या है चक्कर? प्रमाण है एक शब्द, एक शब्द है नय, और फिर कहा है अधिगम है। अधिगम, अधिगम माने होता है जानना, अधिगम माने जानना। अधिगम पहले शब्द पढ़ा है क्या आपने कभी? अधिगमज अभी तो पढ़ा था, निसर्गज और अधिगमज। अधिगम, अधिगम माने क्या कहा था? जानना। अधिगम माने कहा था ना जानना, जानने से हो, उपदेश से हो, दूसरे के समझाने से हो, वो अधिगम सम्यक दर्शन था। यहाँ कह रहे हैं अधिगम माने ज्ञान होता है। कैसे होता है ज्ञान? किसी भी वस्तु का यदि आपको ज्ञान करना हो तो उस वस्तु का ज्ञान प्रमाण से होगा या नए से होगा। ये शब्द हैं, सैद्धांतिक शब्द हैं, शास्त्रों की आगम के शब्द हैं। थोड़ा बहुत इस टर्मोलॉजी को भी जानना पड़ेगा आपको, माने ये जो वर्ड्स हैं, इन शब्दों को वर्ड्स को पहचानना पड़ेगा। यदि आप इनको नहीं पहचानेंगे तो फिर आप शास्त्र पढ़ने में दिक्कत आएगी आपको। दो शब्द यहाँ नए हम पढ़ रहे हैं, एक शब्द पढ़ा है प्रमाण और दूसरा क्या पढ़ा? नए। प्रमाण क्या होता है और नए क्या होता है? प्रमाण किसे कहते हैं? प्रमाण अभी आगे करेंगे चर्चा, यद्यपि ये सब प्रमाण वगैरह की चर्चा भी करने वाले हैं और कुछ नए की चर्चा भी करने वाले हैं। फिर भी जो प्रमाण होता है, प्रमाण है एक ज्ञान का एक ऐसी पोजीशन है जिसमें पूरी वस्तु एक साथ ख्याल में आ रही है, वो है प्रमाण। ऐसा ज्ञान, प्रमाण के बारे में क्या बतला रहा हूं मैं, ऐसा ज्ञान जो ज्ञान वस्तु को पूरी तरह से जाने, वो है प्रमाण। वस्तु प्रमाण विषयम नए विषयम हवाई वस्तु एक अंशम, भूल गया था माइल धवलाचार्य द्वारा लिखी गई। वस्तु प्रमाण विषयम नए विषयम हवाई वस्तु एक अंशम जम दो निर्णय क्षमतम निक्षेपे हवाई विषयम। वस्तु प्रमाण का विषय है और नए किसका नाम है? वस्तु के एक अंश को देखने का नाम नए है। नए अभी समझाऊंगा मैं, अभी नए भी समझाऊंगा आपको, प्रमाण भी समझाऊंगा, नए भी समझाऊंगा, और प्रमाण और नए के प्रयोग भी दिखाऊंगा आपको, मजा भी आएगा आपको। दोपहर का समय है मेरे को पता है क्या, और छुट्टी का दिन है और खाना खा करके आए हैं क्या, ठीक है ना, फिर भी नींद नहीं आ रही है, ये आश्चर्य की बात है क्या। प्रमाण और नए, प्रमाण की परिभाषा क्या बतलाई हमने? वस्तु प्रमाण विषयम, पूरी वस्तु को जानना वो प्रमाण है। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम ऐसी भी चर्चा मिलती है, सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं, सच्चे ज्ञान को प्रमाण कहते हैं, वो पूरा का पूरा जो जान लिया गया वो प्रमाण है। और नए किसका नाम है? उस पूरी वस्तु में से किसी एक एंगल को लेकर कथन किया वो नए है। सिर्फ एक एंगल है, नए माने दृष्टिकोण, नए माने नजरिया, नए माने देखने का एंगल। आप कौन से एंगल से देख रहे हैं वैसा नए लागू हो जाता है क्या? देखने का नजरिया है कि नहीं आपके पास में, दृष्टिकोण है या नहीं है? है आपके पास नजरिया देखने का, हर दृष्टि से एक वस्तु को देखा तो कई तरह से देख सकते हैं आप। नींबू कैसा होता है?
खट्टा।
अरे क्या बात कर रहे हो आप, तीन तीन जवाब आ गए यहाँ। नींबू कैसा होता है, क्या कहेंगे लक्ष्य भाई, तीन जवाब दे दिए इन्होंने। एक कह रहे हैं खट्टा, एक कहते हैं पीला और एक कह रहे हैं गोल। सही बताओ तीन में से कौन सा सही है जवाब? तीनों जवाब सही है। समझ में नहीं आएगा तीन कैसे सही हो सकते हैं। नए है, इसका नाम नए है। नए क्या है? दृष्टिकोण है, देखने का नजरिया है। आप किस नजरिया से देख रहे हैं उसका नाम नए है। वस्तु को देखने के नजरिए को समझो, अपना नजरिया बदलो देखने का। एक व्यक्ति का नजरिया ऐसा है दुनिया में सब बेईमान है क्या, और एक व्यक्ति ये कहता है नहीं नहीं सब ईमानदार है। आज भी ईमानदारी कायम है सब जगह पर। सब जगह पर ईमानदारी है कि सब जगह पर बेईमानी है? नहीं भाई, क्या कहना है आपको, ईमानदारी ज्यादा है कि बेईमानी ज्यादा है दुनिया में?
दोनों।
नहीं ज्यादा क्या है, फिर भी बेईमानी ज्यादा है, ईमानदारी ज्यादा है। इनकी बात माननी पड़ेगी भाई, ये पद पर हैं अभी। ईमानदारी ज्यादा है सच में। कितनी ईमानदारी है, इतनी ईमानदारी, हर कदम पर ईमानदारी है भाई साहब। हम रिक्शे में बैठे और घर पहुंचने पर उसको 100 रुपए देने थे, हमने 500 का नोट दिया। रिक्शे वाला 500 का नोट ले जाकर के एक दुकान पर गया और चेंज करा करके लाया और 400 रुपए ला करके हमारे को दे दिए। ये ईमानदारी है? 500 का नोट जेब में रख करके वो ये भी कह सकता है आपने कब दिए, सोई दिए थे आपने तो? क्या ईमानदारी है सब जगह सर? सारे बिजनेस ईमानदारी के भरोसे चल रहे हैं। आपके सबके काम धंधे बंद हो जाएंगे यदि ईमानदारी नहीं हो तो। विश्वास भी तो चलता है सब क्या, सब ईमानदारी है। मेरे को तो सारी दुनिया में ईमानदारी ईमानदारी दिखती है, बेईमानी तो कोई दिखती ही नहीं है। पापी ज्यादा है कि सज्जन ज्यादा है दुनिया में? सज्जन ही ज्यादा दिखते हैं। आप कहोगे साहब सब पापी ही पापी हैं, तो एक आध तो बतलाओ आपके आस पड़ोस में कौन है हत्यारा, कोई दिखता है? कौन है हिंसा करने वाला? अच्छा कोई चोर दिखता है आपको? फ्रिज में है कोई चोर मनोज भाई है? आपकी निगाह में कोई? बोलने में तो कह दोगे सब चोर हैं क्या, अरे लेकिन सब चोर में से एक आध तो बताओ कोई चोर, कोई नहीं दिखता है। हमें चारों तरफ ईमानदारी दिखाई देती है, ईमानदार है। कहने का मतलब ये है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आपको यदि ईमानदारी दिख रही है इसका मतलब आप ईमानदार हैं, और आपको यदि सब जगह बेईमानी दिख रही है तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। नजरिया तो आपका नजरिया है, इसका किसी कर्म से संबंध नहीं है। ये नजरिया आपका है, आप कैसा देख रहे हैं किसी व्यक्ति को। बहुत प्रसिद्ध कथन है गिलास खाली है या भरा है, सब लोग जानते हैं। आधा पानी है उसमें, एक व्यक्ति उसे आधा भरा कहता है, एक व्यक्ति आधा खाली कहता है। बातें दोनों सही है, देखने का नजरिया अपना अपना है। गिलास खाली है या भरा है, हम क्या कहें, दोनों ही प्रकार की स्थितियां हैं। न खाली कह सकते हैं ना भरा कह सकते हैं, दोनों प्रकार की बातें चलेगी उसमें। खाली भी कह दो भरा भी कह दो उसको, दोनों ही प्रकार की बातें हैं कि नहीं। अच्छा रमेश भाई बड़े हैं कि छोटे हैं? रमेश भाई बड़े हैं छोटे हैं? दोनों हैं। दो रमेश भाई हैं क्या यहाँ? एक ही रमेश भाई हैं लेकिन बड़े भी हैं और छोटे भी हैं क्या? मोहित भाई से बड़े हैं और महेंद्र भाई से छोटे हैं? अपेक्षा लगानी पड़ेगी, अपेक्षा लगाते ही बात बदल जाती है। उन अपेक्षाओं का नाम नए है। नींबू लेमन गोल है किस अपेक्षा से? आकार की अपेक्षा से, आकार आकृति की अपेक्षा से वो गोल है। और वो पीला है येलो है तो किस अपेक्षा से, कि कलर की अपेक्षा से, और वो खट्टा है स्वाद की अपेक्षा से, रस की अपेक्षा से देखोगे तो वो खट्टा है। दृष्टि बदलते ही जवाब बदल जाता है। हमने पूछा नींबू का स्वाद कैसा होता है,
क्या
एक एक अंश के आधार पर पूरी वस्तु की पहचान कर रहे हैं आप, मिश्री कैसी होती है, और सामने से जवाब आया कि मिश्री तो मीठी होती है। हमने कहा मीठी होती है, और भी गुण है उसमें, होंगे बहुत सारे गुण। एक अंश में पूरी वस्तु को देख लिया हमने, अंश की अपेक्षा से देखा गया, ये नए है। अंश मत देखना, अंश की अपेक्षा से पूरी वस्तु को देखना, ये नए कहलाता है, इसे नए कहते हैं। और निराकृत प्रतिपक्षो वस्तु अंश ग्राही ज्ञातुर अभिप्रायो नए है, प्रमेय कमल मार्तंड में कहते हैं सर। धवला में भी इस प्रकार की प्रयोग करते हैं, ज्ञातुर अभिप्रायो नए है, अभिप्राय इत्यस्य को अर्थ है, प्रमाण परिग्रहितार्थ एक देश वस्तु अध्यवसाय अभिप्राय है। प्रमाण से परिग्रहित वस्तु के एक देश में वस्तु का निश्चय वो अभिप्राय कहलाता है, इसका नाम अभिप्राय है। और ज्ञाता का अभिप्राय नए है, उसे नए कहते हैं। नए कुछ समझ में आ रहा है, नए क्या चीज है? सूंड देखी हमने हाथी की, तालाब में था और सिर्फ सूंड दिखाई दी, और आपने क्या कह दिया? हाथी है। कैसे कह दिया आपने? एक अंश देखा ना उसका, ये नए है। सून को तो हाथी नहीं कहते, लेकिन सून से हाथी की पहचान होती है, सून हाथी नहीं होती, इसलिए पहचान लिया आपने। अरे आवाज सुन करके बोल देते हैं आप ये व्यक्ति है, आवाज सुन करके बता देते हैं बंदर है यहाँ, आवाज सुन करके बता देते हैं शेर है यहाँ। आप जाओ कहीं भी, ये जो रणथंभौर वगैरह ऐसी जगह पर जहाँ टाइगर वगैरह है, और ओपन सफारी में आप घूम रहे हैं देखने के लिए, और वो बता देते इधर से आवाज आ रही है, क्या कॉल सुनाई दे रही है हमारे को, किधर 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 आ रही है आवाज, वो उस दिशा में बढ़ जाते हैं आगे। इसका मतलब उनको आवाज से पकड़ में आ रहा है कि वो पशु इधर है। तो ऐसे लक्षण से पकड़ लेना लक्ष्य को। आत्मा किसका नाम? आत्मा के अनंत गुण धर्म और स्वरूप को पूरे को देखना, ये प्रमाण से। और ज्ञान जहां दिखा बोले ये आत्मा है, ये नए। समझ में आ गया? नए नजरिया अपना अपना देखने का, एक वस्तु को देखने के नजरिए अपने अपने हो सकते हैं। मैं इस बात को समझाने के लिए एग्जांपल देता हूं इस प्रकार का। घटना एक घटती है, ठीक है, और न्यूज़पेपर की हेडलाइंस सब जगह अलग अलग होती है। एक घटना घटी, सारे न्यूज़पेपर्स में अलग अलग हेडलाइंस है, ये क्या हुआ? देखने का नजरिया अपना अपना। एक कह रहा भीषण आग, दूसरा कह रहा तबाही मच गई। क्या वर्ड्स अलग अलग है, देखने का नजरिया है उनका। तो जैसी दृष्टि होगी वो वैसा कथन किया जा सकता है। एंगल को कहते हैं नए, एंगल है, नए है माने नजरिया है। क्लियर हो गया कि नहीं? इसमें एक बात इंपॉर्टेंट होती है नए में ध्यान रखने की, वो इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं जिस नजरिए से बात कर रहा हूं मेरा वो नजरिया तो सही है, लेकिन दूसरे व्यक्ति के द्वारा कहा गया नजरिया गलत नहीं है। ये नए है, तो ये नए अनेकांत का ही अंग है, अनेकांत का ही अंग है ये नए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए नए की परिभाषा बतलाते हुए प्रमेय कमल मार्तंड में कहा है अनिराकृत प्रतिपक्षो वस्तु अंश ग्राही ज्ञातुर अभिप्रायो नए। अनिराकृत निषेध नहीं किया, प्रतिपक्षो दूसरे पक्ष का निषेध नहीं है। अभी समझ लीजिए आप नींबू के बारे में पूछा हमने और तीन जवाब आ गए सामने से, तो हम तीन में से एक को तो माने और बाकी दो को नहीं माने, तो ऐसा नहीं चलेगा। खट्टा होता है, गोल होता है या पीला होता है, तीन ऑप्शन, खट्टा है, गोल है या पीला है। बोले भाई साहब आपको यदि देखना है, क्या आपको यदि पहचानना है बाहर में देख करके, तो आप उसको गोल और पीला कहोगे क्या, लेकिन उसका गोलपना और उसका पीलापना ये आपके किसी काम का नहीं है। आपको स्वाद लेना है तो उसके गोलपने से काम नहीं फर्क नहीं पड़ेगा, वो पीला है या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ेगा। उसका स्वाद लेना है तो वो रस कैसा है उसका, वो इम्पोर्टेंट है। क्या आप कोई भी चीज को उसके स्वाद से देखते हैं कैसी बनी है, उसकी शक्ल से नहीं देखते हैं। शक्ल की अपेक्षा उसका स्वाद वो इम्पोर्टेंट चीज है, लेकिन शक्ल भी है, ठीक है ना। माने एक की चर्चा करते समय दूसरे का निषेध नहीं करना, बस वो न्याय कहलाता है। मैंने कहा वो सच और आपने कहा वो झूठ, ऐसा नहीं चलेगा। आप कह रहे हैं आपका एंगल है, आपका नजरिया है, और हम कह रहे हैं हमारा एंगल है, हमारा नजरिया है। देखो भाई, नजरिया बड़ी बहुत गजब की चीज है। हमने एक लाइन खींची और हमने लाइन खींच करके ये कहा आपको इस लाइन को छोटा करना है, लेकिन लाइन को टच नहीं करना है। कर सकते हैं मनोज भाई? बिना टच किए हुए आप उस लाइन को छोटा कर सकते हैं? बाजू में लंबी लाइन खींच तो बस सीधी सी बात है, इसमें क्या है। माने ये नजरिया ही तो है, एक दूसरी लाइन बड़ी खींच दी गई उसके बगल में तो वो छोटी क्या लाएगी। हर जगह पर ये फॉर्मूला लागू होगा, नए बिना नए के काम नहीं चलता है। पूरी दुनिया दो नए पर चल रही है, इसलिए उसका नाम दू नया है। दू मतलब दो, नए मतलब नए। दुनिया, ये दुनिया क्यों कहलाती है, इस जगत को दुनिया क्यों कहते हैं? दो नए हैं, एक फैक्ट है उसका नाम है निश्चय, और दूसरा जो है वो लगावटी बात है, मिलावटी बात है, उपचार से कह दिया गया है, समझाने के लिए बोलचाल के लिए कह दिया गया है, वो है व्यवहार। दो नए निश्चय व्यवहार, दो नए। पूरी दुनिया निश्चय व्यवहार में चलती है। निश्चय की बात सच्ची बात है, लेकिन व्यवहार में भी तो, व्यवहार में तो सब बोलना ही पड़ेगा, व्यवहार में बात तो करनी पड़ेगी ना। व्यवहार में तो आप आखिर उपकार तो मानना ही चाहिए महेंद्र भाई का, बोलो। व्यवहार में निश्चय से तो कोई किसी का उपकार करता नहीं है क्या, लेकिन व्यवहार से व्यवहार अपनी जगह पर है क्या। आखिर भोजन कराया है तो आपको व्यवहार में कहना तो पड़ेगा ही क्या, बोलो। निश्चय और व्यवहार दोनों बातें साथ साथ में चलती है, एक भी को भी निषेध नहीं कर सकते आप, और माननी पड़ेगी। और लोक व्यवहार में ऐसे प्रयोग हम करते हैं, लेकिन इतना और सावधानी रखना, जो बात व्यवहार से कही गई है उसको निश्चय जैसी मत मानना, और जो बात निश्चय की कही है उसे व्यवहार जैसी मत मानना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या समझ में आ रही है मनोज भाई? क्यों मुस्कुरा रहे हैं आप है? क्या चल रहा है आपके दिमाग में बता दो आप है? क्या सुना था पहले आपने? हाँ, व्यवहार की बात निश्चय में नहीं, निश्चय की बात व्यवहार में नहीं, बहुत गड़बड़ हो जाएगी, नहीं तो अनर्थ हो जाते हैं, झगड़े हो सकते हैं, विवाद हो सकते हैं, और कुछ का कुछ हो सकता है, पता नहीं क्या हो सकता है, मैं कुछ नहीं कह सकता। क्या बस हम आपके घर गए और आपने कहा कि पंडित जी इसको अपना ही घर समझो, हमने कहा समझ लिया। क्या तो क्या क्या समझा कि व्यवहार से ही कह रहे हो क्या, और दो चार बार कह दिया तो हमें भ्रम हो गया क्या। अरे अपना ही समझो, इसको अपना ही समझो, आप ही का है, अपना ही घर समझो। चार बार कह दी, पहली बार कहा तो थोड़ा सा शंका हुई थी कि यार सही तो सुना है ना मैंने, दूसरी बार फिर गई तो फिर पता नहीं यार क्या चाहते है ये, फिर तीसरी बार फिर कह दी, चौथी बार कही तो हमने कहा रजिस्ट्री कब करा रहे हो, ट्रांसफर कब कर रहे हो, कि पंडित जी दुनिया को नए पढ़ाते हो, आप नहीं समझते हो। हमने तो व्यवहार से कहा था, कि व्यवहार से कहा था का मतलब, व्यवहार का मतलब ये कहने के लिए है बस, इसका नाम है व्यवहार। सच्चाई नहीं है, काम चलाने के लिए है, कहने के लिए है। तो फिर साहब इतना झूठी बात कह रहे हो आप, क्या दम है इस बात में क्या? इन बात में क्या दम है कि इसे अपना ही घर समझना? झूठी है ना ये बात? तो झूठी नहीं है।
अच्छा,
जब तक रह रहे हो तब तक आपका है, और इसके पीछे भी हमारा स्वार्थ छिपा है। कैसा? कि आप इसको वैसे ही यूज में लेना जैसे अपने घर को लेते थे। क्या लाइट जली मत छोड़ना, रूम से बाहर निकलो तो एसी बंद करके निकलना, ऐसा नहीं कि नल खुला छोड़ दो, हर चीज को ऐसे हैंडल करना जैसे अपनी हो। क्या नहीं तो क्या होता है जब किसी चीज को कोई व्यक्ति पराई समझता है, क्या तो क्या हाल करके आप होटल के रूम से निकलते हैं कि आप ही जानते हैं। इसलिए जो बात व्यवहार की हो, जो बात निश्चय की हो, उन बातों को उसी रूप से स्वीकार करना, ये अपेक्षाएं हैं, ये न्याय कहलाता है। वस्तु को देखने के बहुत सारे एंगल होते हैं, उन सब एंगल्स में अलग अलग अपेक्षाओं से अलग अलग तरह से वस्तु दिखाई देती है। पूरी वस्तु एक साथ दिखाई देवे उसका नाम है प्रमाण, और अंश रूप में उसके अलग अलग एंगल से दिखे उसका नाम है नय। सूत्र बोल लेते हैं वापस, फिर नेक्स्ट सेशन अपना आधे घंटे बाद में होगा। प्रमाण नये अधिगमे है, प्रमाण नये अधिगमे है, बस प्रमाण से जानो और नय से जानो। आप जानना प्रमाण और नये से, फिर अपन करेंगे चर्चा और विस्तार से। चलो।